मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, शुरुआत में एक छोटी सी सूचना से कर रहा हूं, और सूचना यह है कि हम लोग पावर ऑफ एलिमिनेशन पर बातें कर रहे थे, और आपने महसूस किया होगा कि बीच में मैंने पावर ऑफ एलिमिनेशन पर बात करनी बंद कर दी, और खासकर उसके आधारों पर मैंने बात शुरू की थी, और उसके केवल एक आधार की मैं आपसे चर्चा कर पाया था, आपको शायद याद होगा। हो सकता है कि आपके मन में उस समय सवाल आया हो कि भाई बाकी आधार कहां चले गए, सर ने और आधारों की तो बात की ही नहीं। अगर ये प्रश्न आपके दिमाग में उठा है तो बिल्कुल सही है और उठना ही चाहिए। दरअसल दोस्तों ये था कि इस बीच में फिर YouTube के लिए मैंने अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, खासकर आधारों को लेकर के ही, कि जो पावर ऑफ एलिमिनेशन है उसको आप किन किन आधारों पर यूटिलाइज कर सकते हैं, किन किन आधारों पर उसे आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो इसका व्यावहारिक पक्ष था। पहले पक्ष में आपने YouTube के तहत कैसे आप इसके जो पावर होती हैं डेवलप करेंगे, दक्षता कैसे लाएंगे, और इसकी क्या एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंस है, ये सुना। डेफिनेटली आपने YouTube पर सुना होगा, और देखिए ये एक दो बार सुनने की बात नहीं होती है, ये कई कई बार सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब हमारी चीजें पकड़ में आती हैं, हमारे अंदर रचती बसती हैं, और तभी हमारे अंदर परिवर्तन आता है। ये सुन करके खत्म कर देने वाली बात नहीं होती। तो इसका जो सेकेंड पार्ट था, जो प्रैक्टिकल पार्ट था, जो आधार को लेकर था, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो बात की जानी चाहिए थी, उसे मैंने रिकॉर्ड किया। उस समय मैंने अपने डेली ऑडियो लेक्चर में इसकी बात नहीं की थी, रिकॉर्ड हो गया था, तैयार हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब तैयार हो जाएगा और YouTube पर अगर वो प्रोग्राम डाल दिया गया तब फिर वो बताना सही होगा। तो दोस्तों चूंकि YouTube के लिए रिकॉर्डिंग हो गई थी और उस पर काम शुरू हो गया था, शूटिंग हो गई थी कह लीजिए, तो फिर मैंने इस पर बात करना बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया। और आज मुझे ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि इसका जो सेकेंड पार्ट था वह यूट्यूब पर कल डाल दिया गया है। तो यदि आप इसमें जरा सी भी रुचि रखते हैं और आपको लगता है कि आपके लिए यह उपयोगी हो सकता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब पर जाकर आप इसे देखें, सुने, समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने 2022 के क्वेश्चंस को ही आधार बनाकर के पावर ऑफ एलिमिनेशन की चर्चा की है। यदि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो आप बिल्कुल मुझे अपने इस ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको यूट्यूब पर जो भी कमेंट डालना है आप अपने ढंग से डालें, लेकिन चूंकि आप मेरे डेली ऑडियो लेक्चर के श्रोता हैं, तो आप यदि उसमें से किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन महसूस करते हैं तो आप मुझे इसी ईमेल पर जो आप लिखते रहे हैं मुझे बताएं। मैं आपको या तो ईमेल के जरिए या फिर आप लोगों के जो कन्फ्यूजन होंगे उनको इकट्ठा करके अपने डेली ऑडियो लेक्चर के जरिए उन भ्रमों का निवारण करने की हर संभव कोशिश करूंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा और वो ये कि आपको इस प्रोग्राम को जरूर देखना चाहिए। साथ ही पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं यहां कह रहा हूं, यदि आपको लगता है कि यह आपके लिए लाभकारी हो सकता है तो आप जिन्हें भी सही समझते हैं और जिनके भी आप शुभचिंतक बनते हैं, बेहतर होगा कि आप उन्हें भी बताएं कि वे भी इसे देखें, क्योंकि मेरी दृष्टि से खासकर प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए इसमें सिद्धस्थ होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मुख्य विषय के रूप में तो मैं आप सबसे सोचने के बारे में ही बात करूंगा, लेकिन इससे पहले जो एक खबर है वह आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म तिथि है, और आपको मालूम है कि अंडमान निकोबार में हमारे बहुत से आइलैंड हैं, उसमें से कुछ आइलैंड के नाम जो हमारे परम वीर चक्र विजेता रहे हैं, अलंकृत रहे हैं, उनके नाम पर रखा जा रहा है। ये खबर आप लोगों ने अखबारों में पढ़ी होगी। तो दोस्तों अब देखिए क्या है कि किसके नाम पर कौन सा द्वीप रखा गया, ये तो कम से कम एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, कैसे पूछा जा सकता है वो संभव नहीं है, और जनरल स्टडीज कोई ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ भी नहीं है उलझन भरा कि आपको छकाने की कोशिश करे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी टॉपिक से आप तैयारी कैसे करेंगे, इससे आपको हो सकता है कि उसका एक पैटर्न पकड़ में आए। अब तो लेकिन परमवीर चक्र की बात हो रही है और एक बड़ी बात हो रही है, तो फिर पहली बात आपके दिमाग को यह सोचना चाहिए कि नहीं, जो परम वीर चक्र का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है, आपको इस टॉपिक पर एक बार थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो आप जान ही लीजिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड से जिस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं उसके तहत मुझे किन किन जानकारियों की जरूरत है, उन्हें तो मैं देख ही लूं और हो सकता है कि उसमें जो विकल्प दिए गए हैं सभी विकल्प मेरी पकड़ में न आए, लेकिन अगर एक दो भी मेरी पकड़ में आ गए तब मैं सही उत्तर तक पहुंच जाऊंगा। यही सोच करके आपको इस टॉपिक की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि इस पर कुछ भी पूछा जाएगा और मैं सीधे सीधे अपने उत्तर तक पहुंच जाऊंगा तो मैं समझता हूं कि यह अप्रोच ठीक नहीं है। कितनों के साथ आप ऐसा कर लेंगे? तो आपको जो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक ढांचा होता है, बस उतना ही अगर मालूम हो जाता है तो प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। तो परमवीर चक्र पर आप अपने ढंग से तैयारी कर लीजिएगा, इस टॉपिक पर चले जाइए, आप देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ बातें मैं यहां आपके सामने रखना चाह रहा हूं। पहला तो यह कि हमारा ये हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। कहीं कहीं अवार्ड शब्द भी आता है, लेकिन मुझे लगता है कि अलंकार शब्द ज्यादा उपयुक्त है। इससे आप उन्हें अलंकृत करते हैं, उन्हें कोई पुरस्कार नहीं दे रहे हैं। अलंकार और पुरस्कार में फर्क है। पुरस्कार तो हम किसी को भी कुछ भी दे देते हैं, विजेता को दे देते हैं, जहां कोई प्रतियोगिता हो रही हो वहां तो पुरस्कार दिया जाता है ना। लेकिन यहां कोई प्रतियोगिता नहीं कराई जा रही कि किसे परमवीर चक्र दिया जाएगा और उसमें 20 लोग भाग ले रहे हैं और फिर उसमें से 3 लोगों को दिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। यहां तो सीधी सी बात है कि युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के दौरान किस व्यक्ति ने, किस सैनिक ने अपने कुछ विशेष वीरता का प्रदर्शन किया है, कुछ विशिष्ट असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया है। भले ही वो शौर्य के प्रदर्शन के दौरान वो शहीद हो गया हो, लेकिन उसने जो दिखाया, जो अपनी वीरता दिखाई, जो साहस दिखाया, वो अद्भुत था, वो अभिनंदनीय था, वो प्रशंसनीय था। तो उसके इस प्रशंसा के रूप में उसे अलंकृत किया जाता है। इसीलिए सही शब्द होगा हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, राइट। 26 जनवरी 1950 को ही इसकी स्थापना कर दी गई। जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, एक अच्छी बात यह है कि इससे भी स्थापित किया गया, तो डेट आपको मालूम हो गया। दोस्तों, जो सबसे पहला अवार्ड भारत में इस तरह के देने की शुरुआत हुई थी मिलिट्री में, उसकी शुरुआत की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, है ना, उसके हुआ करते थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय भी इन्हीं को ही जाता है, इन्होंने ही उसके विरुद्ध कानून बनाया था। शायद लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आपके लिए नया नहीं होगा और नया होना भी नहीं चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक पर तो आपकी ठीक ठाक तैयारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक का आपको पीरियड याद आ रहा है, प्रथा से रिलेटेड पीरियड याद आ रहा है, याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए, 1834 में इन्होंने एक मिलिट्री अवार्ड की शुरुआत की और उसका नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट। बाद में फिर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो फिर उसने अपने नाम देने शुरू किए और हमने फिर आजादी के बाद उसे अपना नाम दिया। आप जानते हैं कि हमारे और भी दूसरे वीरता के पुरस्कार हैं, लेकिन जो हाईएस्ट है वो परम वीर चक्र है। फ्रेंड्स, ये जो परम वीर चक्र है, ये बिल्कुल जो ब्रिटेन सरकार अपना एक अवार्ड देती है, वीरता का सर्वोच्च अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस, बिल्कुल उसके समकक्ष है। यानी कि हमारा परम वीर चक्र और उनका विक्टोरिया क्रॉस बिल्कुल एक ही जैसा अवार्ड है, कह लीजिए डेकोरेशन है। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको बता दी हैं। बेहतर होगा कि आप भी थोड़ा सा इस टॉपिक पर जाएं और अपने ढंग से एक बार आप पूरा पढ़ लेंगे, तो पढ़ने के बाद होता क्या है कि वो इमेजेस दिमाग में बैठ जाती हैं, तो ज्यादा समय तक वो आपके साथ रहती हैं। दोस्तों, आइए अब मुख्य विषय पर बात करते हैं, कैसे सोचें। हालांकि वक्त मेरे पास कम बचा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह, शायद शुक्रवार की ही बात है, मैंने सोचने के बारे में आप सबसे रिक्वेस्ट की थी। मैं जानता हूं कि आपको मेरी इस बात से असहमत होने में तो थोड़ा वक्त लगेगा और आप बहुत आसानी से अपनी असहमति को व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। या तो आप मुझे स्वीकार कर लेंगे या आप द्वंद्व में पड़ जाएंगे, सीधे तो मुझे रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे, बशर्ते कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की थोड़ी सी भी सही जानकारी आपके पास होगी। मैं सही जानकारी की बात कर रहा हूं, जानकारी की बात नहीं कर रहा हूं, जानकारी तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन मैं सही जानकारी की बात कर रहा हूं। सही जानकारी क्या है? सही जानकारी यह है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को आप कैसे क्वालिफाई कर सकेंगे, फिर चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि उसमें आपकी अपनी दक्षता का होना बहुत जरूरी है, और अगर आप जरा भी इसे स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये तो होना चाहिए, तो मेरी बात से आप असहमत नहीं हो पाएंगे। जरूरी तो ये है। मुझे नहीं मालूम कि आपने मेरे उस लेक्चर को कितने ध्यान से सुना, कितनी बार सुना, और सुनने के बाद उनमें से कौन सी बातें गांठ बांध ली, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात तो मैं कह सकता हूं कि यदि आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि प्री हो सकता है कि क्वालिफाई कर जाए, लेकिन मेंस और इंटरव्यू को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है कि इंटरव्यू को आप क्वालिफाई वैसे कर जाए जो मिनिमम मार्क्स अगर लाने होते हैं तो नंबर अगर आपको हो सकता है कम भी मिले, इसके बाद भी लिस्ट में आपका नाम हो जाए क्योंकि रिटेन में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेंस को क्वालिफाई करना तो लगभग लगभग असंभव है, कठिन की बात नहीं कह रहा हूं मैं, असंभव है। तो सोचने की तो आपको आदत डालनी होगी। मैंने पिछले लेक्चर में एक दो टॉपिक को लेकर के आपको सोचने के एंगल्स के बारे में बताया था कि आप इसे इस एंगल से सोच सकते हैं, इस एंगल से सोच सकते हैं, इस एंगल से सोच सकते हैं। दोस्तों चूंकि अभी वक्त नहीं है तो मैं आपको अब इसके जो दूसरी बातें बताई जानी चाहिए थी वे नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन इस टॉपिक को डेफिनेटली मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। लेकिन यहां मेरा एक अनुरोध भी है, सहयोग का अनुरोध, और वो आपसे सहयोग चाहिए, और वो ये कि इस टॉपिक को लेकर के आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जो भी भ्रम हो, संदेह हो, प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी ईमेल के जरिए लिखकर भेजें। जल्दी से जल्दी मतलब आज ही लिख करके भेजें, ज्यादा से ज्यादा कल तक, ताकि मैं अपने लेक्चर्स में उन्हें शामिल कर सकूं। इतना सहयोग आप करें ताकि मैं आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकूं। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं अंकित, उत्कर्ष गर्ग गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, प्रज्ञा मध्य प्रदेश से, रिया मिश्रा, दुष्यंत कुमार, रोशनी शुक्ला अमेठी उत्तर प्रदेश से, और आशुतोष आचार्य। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को दोस्तों अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।